कृष्णा खालसा भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में है परम पूज्य भक्ति आश्रय महाराज का जोरदार स्वागत। आज हम कौन से सत्र में पहुंच चुके हैं?
पांचवे
डे नंबर 5। तो महाराज जो है मथुरा लीला का वर्णन कर रहे हैं। कल बहुत सुंदर गोवर्धन लीला की चर्चा हुई, मथुरा लीला की चर्चा हुई, तो महाराज उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। तो आप कृपा करके ध्यान पूर्वक सुनिए। और आज मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आज जो है क्या है, तो आप सब लोगों ने व्रत रखा है? कितने वक्त ने व्रत रखा है? तो आपको मैं एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। जब हम लोग महाराज को लेने आ रहे थे तो जिन परिवार ने ये कार्यक्रम रखा है उनकी जितने भी बाकी सगी संबंधी है वैसे भी काशी के बारे में शायद जानते नहीं थे, रखते भी नहीं थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर भागवत कथा हो रही है और महाराज इतने सुंदर तरीके से भागवत के बारे में बता रहे हैं तो उनकी रुचि इतनी बड़ी कि सारे परिवार में अधिकांश जो है काशी का व्रत रखा है। तो उनसे प्रार्थना है काशी का व्रत जारी रखें। तो महीने में दो बार आती है तो इस महीने में अभी 31 को है तो उसको भी जरूर रखें। तो उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग महाराज के मुखारविंद से सुनेंगे। कृपा करके आप ध्यान पूर्वक सुनिए और मोबाइल फोन जो है कृपा करके साइलेंट कर लीजिए और कोशिश कीजिए आप आखिरी तक रहें क्योंकि 8 बजे कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं जो सूचना है आपको बतानी है आखिरी दिन के लिए और क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या चीजें होंगी। तो आप कृपा करके शांतिपूर्वक बैठे और आखिरी अनाउंसमेंट सुन के ही जाइए, ठीक है? तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबसे प्रार्थना है कि हर बार ये परेशानी आती है कि भक्त लोग जो है बाहर बैठ जाते हैं कि उनके अंदर उनको दिखाई देता जगह होती नहीं, लेकिन जगह होती है क्योंकि हम लोगों के बीच में या तो अंतराल गैप होता है या हम लोग आगे नहीं बैठे होते। सबसे प्रार्थना है जितना आप आगे आ सके उतना लोग जो है अंदर बैठ के दर्शन महाराज के दर्शन करते हुए विग्रहों के दर्शन करते हुए थोड़ा सुन पाएंगे। तो थोड़ा सा कष्ट कीजिए, मैं जानता हूँ आपने कुछ खाया पिया नहीं होगा शायद, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा कष्ट करके थोड़ा आगे आ जाइए ताकि ज्यादा सारे लोग पीछे बैठ कर आराम से दर्शन कर सके। अगर किसी को कुर्सी की जरूरत पड़े तो हम यहाँ पर इस तरफ कुर्सी और लगा देंगे ताकि आप कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हैं। अगर कोई नीचे बैठ सकता है तो कृपा करके कुर्सी छोड़ दें बिकॉज कुर्सी वहाँ पर सीमित ही है, वहाँ कुर्सियाँ नहीं आ सकती। तो जिनको कुर्सी की जरूरत हो तो वो ही कुर्सी का इस्तेमाल करें, बाकी नीचे बैठ के आराम से कथा का जो है आप श्रवण करें, ठीक है? हरे कृष्ण।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। तो आज भी इस कथा सत्र के पांचवें दिवस में जो आप लोग श्रद्धालु भक्तगण मातागण पधारे हैं उपस्थित हैं सबको मैं इस्कन के तरफ से विशेष करके इस्कन पंजाबी बाग राधा राधिकारण मंदिर की तरफ से सबको स्वागत करता हूँ। विशेष करके आज भी हरिवासर है, एकादशी तिथि है। एकादशी को शास्त्र में कहा गया कि भक्ति की जननी है, भक्ति की माँ है एकादशी तिथि। अगर उसको हम जतन से पालन करते हैं तो अवश्य भक्ति प्राप्त होती है। तो जत्न में पालन करना पता नहीं आप कैसे कैसे करते होंगे। व्रत रखने में हम इतने उस्ताद हैं, कितने अच्छे से रखे होंगे वो तो आम जाने और एकादशी तिथि जानती होगी। लेकिन हम जिस स्तर में है अगर उनसे अपना शुद्धिकरण अपने वस्तु के शुद्धिकरण भी चाहते हैं तो इसे शास्त्र में उल्लेख है। अगर एकादशी के दिन हरि कथा विशेष करके भागवत कथा श्रवण स्वयं करें, दूसरे को करावें और जो नहीं आ पाए भागवत जैसे ग्रंथ को उनको उपलब्ध करावें, मतलब भागवत ग्रंथ स्वयं ले और न किसी को दान दे तो बहुत बड़ी फल प्राप्त होता है भागवत दान से। एकादशी तिथि हरिवासर में एकादशी द्वादशी में तो मुझे इसे सूचना प्राप्त हुआ कि मंदिर की तरफ से सामने कई भागवत के स्टॉल लगा रखें। तो अगर कोई आप चाहते हैं इस तिथि का पूरा पूरा फायदा उठाने के लिए तो यथाशक्ति और प्रयास कर सकते हैं, पूरे हो एक खंड दो खंड जितने संभव हो। कि और विशेषतः ये पाप मोचनी एकादशी है, उसको कोई ठीक से करे हमारे से पाप में तो कोई कमी नहीं है। तो मोचन करने का उपाय से सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है। और तो आज आप लोग जो बहुसंख्या में पधारे हैं तो मैं भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री श्री निताय गौर सुंदर श्री राधा राधिकारमण श्री श्री कृष्ण बलराम के चरण में प्रार्थना करूंगा कि आप सबको उनके भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानं तिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितंश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण जगन्नाथ जय वैकुंठ नाम धृप जय देव कृपा सिंधु जय लक्ष्मी पते प्रभु जय नीलांबुज श्याम नीलजीमुत सन्निभ जय पद्माधरी त्रिभ्याम निसेवित पदांबुजम् जनार्दन जगत बंधो शरणागत पालक त्वं दास दा सदा सदा सानां दासत्वं देहि मे प्रभु दासत्वं देहि मे प्रभु। तो हम सभी को करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि अभी फिर अब आप मन के जान से मथुरा पहुंच जाइए, उसी समय के मथुरा में महाराज कंस की एक दिग्विजय राजा के राजधानी, उस कैपिटल सिटी को दर्शन करने के लिए कुछ गोप बालकों के साथ में स्वयं भगवान राम श्याम पद ब्रज में चल रहे हैं नगर दर्शन के उद्देश्य से। वो प्रवेश करके दर्शन किए, दर्शन करते करते क्या करें, दर्शन में इस शुभ मांगल की तिथि में ओपनिंग किए एक मडर में, सबको पता है खुली बाजार में सबके सामने ऐसे मडर किए और कोई चिंता नहीं, भय नहीं, गड़ारी नहीं, ऐसे चल पड़े। मर्डर करके उनसे छीन लिए वस्त्र, राजा का कपड़ा, रंगे हुए नए सजे हुए रत्न खचित वस्त्र ले लिए, और फिटिंग नहीं होता करके और इच्छा से टेलर भी आ गया, फिटिंग कर दिया। अब तो राजवेश है, हैं? अब ये गोपवेश नहीं, अब तो राजवेश है। अब आगे बढ़ते हुए कल अब सुन चुके हैं माली सुदामा के वहां पहुंच चुके हैं, घर में प्रवेश तो कर चुके हैं, बाहर में नगरवासी भीड़ इकट्ठा होकर चर्चा करते हैं सुदामा के भाग्य का कि क्यों सुदामा के घर में बिन बुलाए कैसे आ गए भाई, उनका सगा चाचा लगेंगे वसुदेव के भाई है मक्रूर जी, उन्होंने हाथ पकड़ करके पैर पड़ करके रो रो करके कितने पुकारा, कितने बड़ाई किया, नहीं गए उनके घर, मैं स्वीकार कर दिया। अब ये तो ना देखा ना कभी बुलाया, भाई घर के सामने नहीं, उनके घर में स्वयं आकर घुस जाते हैं, वो अभी तक गेट पर भी नहीं स्वागत करने के लिए है, क्यों नहीं, क्या विशेषता है, इसको चर्चा नगरवासी सब कर रहे हैं, आप सब सुन चुके हैं। इसको सुन करके नागरिक कहते हैं अच्छा तो ये निष्ठा है, जब माली सुदामा ने सदा के लिए माला ग्रंथन किया केवल उन्हीं के लिए, तो भाई जब वृंदावन से मथुरा पधारेंगे अवश्य उनके घर में तो पधारना ही तो निश्चित है, वो उनका अपरिचित थोड़ी होगा, जीवन भर जो उन्हीं के लिए किया है सेवा और किसी के लिए किया ही नहीं। आज भी जैसे सुदामा को पता चला था कल से, तो दिन रात एक करके घर बुहारना, घर सजाना, साफ करना और कंदमूल फल ला के रखना, घर में अवश्य पधारेंगे, उनका मन में बिल्कुल संदेह नहीं था कि ये तो कुमार साक्षात परमेश्वर है, बिल्कुल विश्वास था उसका। और ये भी विश्वास था अगर मथुरा आवेंगे तो मेरे घर तो आवेंगे ही, मेरे स्वामी है, मुझे क्या नहीं पहचानेंगे, पहचान देना थोड़ी पड़ेगा, वो तो आएंगे, अवश्य आएंगे। देखिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद एक बात कहते हैं कि हम सब भक्तों को इतने ज्यादा प्रयास भगवान को देखने के लिए, भगवान को धाम जाने के लिए करना नहीं चाहिए, हम ना भगवान को देख सकते हैं अपने बलबुते पर, प्रयास पर ना जा सकते हैं, नहीं बल कभी नहीं हो सकता, बल्कि फिर क्या करना चाहिए, हमको ऐसे काम करना चाहिए अपने स्थान में रह करके भगवान स्वयं आ जाए हमको देखने के लिए, हमको दर्शन देने के लिए, हम नहीं देख सकते उनको, वो दर्शन दे दें तब उनकी मर्जी। तो सुदामा ने कोई प्रयास नहीं किया, वृंदावन में नहीं गया, कुछ नहीं किया, अपने व्रत अपने ध्यान अपने सब कुछ लगा दिया, पूरा जीवन जो उनके साधन प्राप्त था माली मालाकार के रूप में, पूरा उन्हीं के सेवा में, और किसी के नहीं। आजीवन कंस जब बाध्य करके महाराज बना तो उन्होंने तो काम ही छोड़ दिया था, काम छोड़ करके वही बैठा था, रो रहा था कब प्रभु सुजोग देंगे, फिर मैं सेवा कर पाऊंगा, वृद्ध अवस्था हो गया। लेकिन जब ये सुना कि ये वसुदेव नंदन आ रहे हैं, तब तो उनका हृदय का उल्लास सतगुण बढ़ गया। रात दिन एक करके लगा उनको स्वागत में, अकेला है घर में बेचारा। कल सुने हैं किस प्रकार उन्होंने घर फिट किया, बाजार से कुछ सुई धागा नया खरीद के लाया, घर धोधा करके कुछ कुछ फल मूल कंद रखा कि भगवान को कुछ भेंट देगा, भगवान घर में आएंगे कैसे खाली हाथ जाएंगे, और अपने बगीचा में जा करके फूल पौधे बिरिदों को ऐसे सिंचाई किया, ऐसे उनको प्रयोग दिलाया, उनको प्रार्थना किया कि अभी तक पाल पुल के रखाऊं, काल के दिन आप सब धन्य हो जाएंगे, पूरे खुश होकर के पूरे पूरे खिलना, काल स्वामी आ रहे हैं। और वो पौधे तो उनके सगे संतान जैसे है, उनके बात मानते थे, सुनते थे। सुबह उठकर देख रहा है बगीचा में, तो वही आश्चर्य है, उनके पूरे जीवन में ऐसा कभी फूल खिले ही नहीं थे। अद्भुत अद्भुत है, जो खुशबू फूल में हुआ करता था वो जानता था, वो सतगुण बढ़ गए हैं, सुंदरता साइज रूप, और तो कोई शाखा प्रशाखा पत्र वृंत कुछ है ही नहीं, केवल फूल ही फूले सब। इतने प्रसन्न चित्त हो गया, और भगवान के सेवा का जब सामग्री से प्राप्त होता है तो सेवक तो निश्चित प्रसन्न होगा, उत्तम कोटि का सामग्री। मन भर करके डालिया को भर के, डालिया भर करके फूल और पत्ता मंजरी तोड़ करके स्टक करके रखा। 8 बजे तक तो फूल और पत्ते संग्रह में लगा उसको, उसके बाद में दो साइड में स्टक करके रख दिया पत्ते फूल कलियां। और अभी इतने दिन के जो छोड़ा हुआ संन्यास लिया था अपने कला में बैठ गया, आज तो साक्षात परमेश्वर विराजमान करेंगे सशरीर, और उनको डायरेक्ट उनको प्रत्यक्ष माला बनाने का सुयोग मिलेगा। तो माला बनाने का ये मन में ये भाव रखकर कि सीधा आज भगवान को मैंने श्रृंगार करूंगा, फूल में सजाऊंगा, ये मन में रख करके उन्होंने माला ग्रंथन कार्य में लग गया। आपको पता है सुदामा जैसे विशेषज्ञ फूल के ऊपर तो कोई है ही नहीं, किस प्रकार से कौन से रंग के कौन से गंध के माला कितने बड़ा के नाना प्रकार के स्तवक, और गले के लिए, बाजू के लिए शिरोभूषण, बाजू भूषण, अलग अलग प्रकार के अलग अलग साइज के माला बनाने लगा, बनाते गया। मानो इतने तन्मय हो गया। ऐसे ही आप जानते हैं, आप में से भी कोई कलाकार होगा किसी प्रकार के कला में, जब आप कभी कभी अपने कलाकारी करने में उलझ जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं, हम लोग में भी, तो सामान्य रूप से हम भी अपना देह शुद्धि भूल जाते हैं, शुद्धि बुद्धि हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ जाते हैं, अरे लगे हैं भूल गए, शरीर शुद्धि भूल जाते हैं अपने कलाकारी के सृजन में। आज तो सुदामा माली ने अपने पूरे जीवन के चरम सौभाग्य का सृजन में लगा हुआ था, तो उनको देह स्मृति रहेगा भी कैसे, भूल गया था वो कुछ है करके, अपने लंबे लंबे अंगुली और सुई आज यंत्र चालित भांति में चल रहा था, माला बनाने लगे थे वो, तो अपने कार्य में इस तरह व्यस्त है कि शुद्ध बुद्ध खो बैठा है। और यहां स्वयं भगवान राम श्याम सखाओं के साथ उनके घर में प्रवेश कर चुके हैं, उनको क्या पता कि घर में जाकर के उनको थोड़ा वेलकम करूं, रिसीव करूं, वो तो अपने लगा हुआ है, पता नहीं। भगवान कृष्ण बलराम उनके घर में प्रवेश करके देखे कि अरे भाई वो तो माला बनाने लगा है, सारे सखाओं के साथ जाकर उनके पास खड़े हो गए, तब भी उसके ध्यान ही नहीं, उनका तो वैसु तो लगा है। भगवान उसे खड़े होकर देखे, कितने तन्मयता है सेवा में, मैं स्वयं आ चुका, मेरे ही लिए बना रहा है, अब मैं आ चुका हूं उनके पास, खड़े हो तभी दिखता ही नहीं मुझे। तो भगवान को स्वयं पुकारना पड़ा, रे माली सुदामा, बड़े स्नेह भरी और आग्रह करके उनको पुकारे। तब भी उसके ध्यान भंग नहीं हो रहा था। पास में चले गए दोनों भाई, एक साथ में राम और श्याम दोनों के हस्त कमल उनके सर के ऊपर स्पर्श किया। जब उनके मस्तक में उन दोनों के कर कमल स्पर्श किया तो लगा ये क्या है, तब आवाज भी श्रवण में आया तो चौंका, उठ करके देखा, पहली बार देखा, अब तक तो देखा नहीं था, सुना था केवल। अरे बाप रे बाप, वही उनके कला कले वर कन्हाई संगे रोहिणी सुता, कृष्ण और बलराम राज वेश में अभी अभी फ्रेश कपड़ा में सज धज करके दोनों सामने खड़े हैं, मस्तक में कर कमल रख करके। उनको पहचानने में और गड़बड़ी नहीं हुआ, कोई भूल नहीं किया। ओहो मेरे स्वामी, तुरंत खड़े हुआ, उठ करके हड़बड़ी से चरण वंदन किया, दंडवत किया, उठाओ क्या करेगा, भूल गया। अरे आप आ चुके हैं, मैं क्या करूं क्या करूं कैसे करूं, तोड़ कर गया बेचारे को, इतने बड़े घर तो था नहीं, गरीब था, फटे पुराने चटाई पड़ा था, आसन लगा दिया। अरे आसन पुराना है, झाड़ छोड़ दे कैसे, और क्या करूं, थोड़े पत्तल ले आया, थोड़े पत्तल और फूल पत्ती ला करके बिछा दिया उसके ऊपर, बोले उसके ऊपर अब बैठिए और क्या करूं, यही मेरे घर में है आसन, वही आसन लगा दिया, उसके ऊपर बैठा दिया सबको। दौड़ करके कलसी में पानी ले आया, ला करके सभी का चरण धोया। माली है बेचारे, कोई पुजारी तो नहीं, यथाविधि उसको ज्ञान था, सबके चरण धोवन किया। चरण धोने के बाद चंदन घिस के रखा था कल रात से, चंदन लगाया और पूजा प्लेट भी रेडी करके रखा था। अब चंदन के बाद अब धूप दीपक अंध माल्य पुष्प आदि सब देकर के उनको यथाविधि पूजा किया, अक्षत आदि देकर के पूजा किया। पूजा करने के बाद, पूजा करने का विधि पता नहीं था, पहले धूप दूं कि बाद में आरती दूं, क्या दूं, जैसे भी आया जैसे कर दिया। पूजा पूजी करके हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु जब मेरे घर में पधारने का दया किया तो मेरे कंगाल के घर में जो कुछ है उसको भी स्वीकार करो। अरे अब तक चार साढ़े चार बज चुका था, बच्चों का स्वल्प आहार का समय हो चुका था, बच्चे तो चार टाइम खाते हैं, उनका अभी स्वल्प आहार का समय हो चुका था, पूछने क्या था, और फल कंद का डालिया लगे धर दिया। ओ उनको प्रार्थना करने से पहले ही वो शुरू कर दिए थे गोप बालों को, उनको भाई ये सब शिष्टता का शिक्षा तो स्कूल के लिए पढ़े तो है नहीं थे, सामने आया तो उठा लिया, दादा तू ले लो बस, वो प्रार्थना करे भाई ले लो, उसको यहाँ तक अपेक्षा नहीं की, सब उठा के अरग लिए, भोग डायरेक्ट लग गया भोग, फलाहार कर लिए। सुदामा तो देख करके अपने आप फल लेकर खा रहे हैं, बड़े प्रसन्न चित्त है, हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़ा हो गया और गदगद कंठ से बोलने लगा, हे मेरे परम उदार प्रभु, आज मेरे घर में अपने पधारे, मेरा जन्म आज सफल हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरे पितरों ऋषि देवता भाई बंधु कुटुंब मेरे घर सब आज धन्याति धन्य हो गया। आप जो मेरे घर में आए और मुझे क्या चाहिए, आपकी कृपा से ही आपके सेवा का सुअवसर प्राप्त होता है, तो आप मुझे इतने दिन के बाद आप मुझे स्वयं आकर के मेरे घर में प्रवेश करके मुझे अपना लिया, मुझे अपनाया तो मैं धन्य हो गया, अब मुझे आदेश करें मैं क्या सेवा करूं आपको, ये तुच्छ सेवक। भगवान ने अब तक खा पीकर खड़े हो गए, बोले जिस काम के लिए आया था वो तो करता ही नहीं, अब पूछ रहा है क्या करूं। अरे तू हमारे लिए माला बना रहा था काल से, माली हो और हम माला पहनने के लिए आए हैं तेरे पास, अब पूछ रहे क्या सेवा करूं। बोले अरे सुदामा, हंसते हुए कृष्ण कहे, हम तो तेरे घर माला पहनने के लिए आए, अब जब तक तो तू है तभी तो हम तेरे ही माला विग्रह के रूप में पहनते थे, अभी साक्षात आए तो माला नहीं पहना रहा, किसके लिए बना। अरे मैं तो भूल गया था, बिसुर गया था बिल्कुल, बेचारा यही होता है, प्रेम अधिक के कारण जो असली चीज जो देना था वही भूल गया था, अब जब याद आया आप बोले अब खड़ा हो जाओ अभी करता हूं। एक से एक चुन चुन करके आपने हाथ से बनाया हुआ माला, पूरे गले से घुटने के नीचे तक लटकने वाले वैजयंती माला मोटे मोटे, और पृष्ठभाग में माला, शिरोभूषण, बाजू में, कलाई में, एड़ी में, आप सब जगह में ऐसे पुष्प के स्तबक ऐसे सजाया, ऐसे फूल को बेस कराया स्वयं। वो तो विशेषज्ञ हैं, केवल उनको नहीं पूरे सखा साथियों को लेकर के दोनों भाइयों में ऐसे सजाया कि प्रभु जी ने बैठे हैं, कैसे हमारे वृंदावन के बिहार जी फूल में सजते हैं तो कुछ बोलेंगे।
फूलों में सज रही है श्री वृंदावन बिहारी।
आप भी बोलो, आपको दिखाने पर है
फूलों में सज रही है श्री वृंदावन बिहारी।
कृष्ण बलराम अभी पुष्प वेश हो चुके हैं। पहले तो महाराज कंस के बड़े रंगे हुए नूतन वस्त्र पहन चुके थे सारे साथियों के साथ, उसके ऊपर सुदामा के हाथ के बनाए हुआ पुष्प में जो श्रृंगार हो गए, उनकी सुंदरता का फिर वर्णन क्या किया जाए। भगवान त्यामर ऐसे है, उनको कुछ श्रृंगार की आवश्यकता है ही नहीं, बिन कुछ ना फूल ना अलंकार ना आभरण कुछ ऐसे नंगे खड़े हो जाए तब बड़े बड़े महामुनिंद्र देवेंद्र जोगिंद्र की उम्मति आकर्षण कर ले। उनको किसी चीज का आवश्यकता नहीं सुंदर बनाने के लिए, बल्कि भेष पोशाक अलंकार आभरण वो सुंदर बन जाते हैं उनको स्पर्श करके, उनमें जा करके। सुदामा की बनी हुई माला वो कृतार्थ हुए आज भगवान को स्पर्श करके, इतने दिन का उनको जो पुष्प बनने का जो तपस्या उनका आज पूरा हुआ भगवान के शरीर को स्पर्श पा करके उनको सजा करके। तो इस प्रकार सभी को सजा करके पुष्प वेश में माली सुदामा आ करके हाथ जोड़ करके बैठ गया दोनों भाइयों के सामने। बस इतने सुंदर माला में सज गए तो भगवान अपने कर कमल उनके सर के ऊपर धर दी। दोबारा बोलो सुदामा, क्या चाहिए, क्या मनोवांछा है तेरा, जो चाहिए सो दे दूंगा, बोलो। सारे गोप साथी बोले देखो ये हुआ ना काम, ऐसे बात होता, बेचारा जिंदगी भर लगा है तू देने के लिए, हाँ कुछ देना चाहिए, अभी हमारे पास कुछ नहीं है, कल दे देंगे पिताजी को बोल के, उसमें क्या है, आज एक बुक लाए नहीं, दे देंगे, बोलो जो मांगे, जाकर के नंद बाबू को बोलना है और कल भर देंगे घर में, क्या बात। तो माली सुदामा ने देख रहा है सामने उस नील सुंदर ने इतने सुंदर वेश पोशाक सज धज करके अपने अभय कर कमल उनके मस्तक पर धारण किए हुए हैं, जिनके सर पर उनके अभय कर के स्पर्श प्राप्त हो जाए उनको इस त्रिभुवन में कुछ दुर्लभ फिर होता है क्या, क्या मांगेगा उससे बढ़कर, वो क्या चाहिए, सब तो मिल चुका है उसको। लेकिन भगवान बोल रहे हैं तो हाथ जोड़ करके अश्रुपूरित नयन में गदगद कंठ से माली सुदामा बोलने लगा, हे प्रभु जब इतनी कृपा की है इस अधम पर, बस ओ मेरे से वर देने के लिए मुझे चाहते हैं तो मुझे केवल यही चाहिए, जन्म जन्म तक आपके इस चारों चरण में अनुराग बने रहे, आपके भक्ति करते रहूं और आपके निज जन के प्रति मेरा मित्रता भाव रहे और समुदाय प्राणी मात्र के प्रति मेरा दया भाव बनी रहे। बस ये तीन मांगा उन्होंने, क्या वर मांगा याद रहना। सुदामा देखिए, हम लोग साधन भजन करते हैं सोचते हैं भगवान सामने आने से क्या मांगेंगे, पता नहीं किसका मन में क्या मांगेंगे, भगवान किसके घर में आए, दो दो बार उसको दर्शन दे स्पर्शन करे, उनके घर में खाए, उनके सामने बैठे, उनके सेवा स्वीकार करे और आपने कर कमल उनके सर में स्पर्श करे, उनको प्यूरिफाई कर दे, भगवान के दर्शन स्पर्शन सेवा से पूरे आपाद मस्तक पूरे पवित्र होने के बाद में, भक्ति में पूरित होने के बाद में जो मांग निकल रहा है मुंह से वो यही मांग है। सारे वेद वैदिक साधन तक सार अंश है यही, अगर कोई मांग हो तो प्रभु की चरण में भक्ति, अविस्मृति तब चरणार विंदे भवे भवे मस्तु भवत प्रसादात, आपके कृपा से आपके शरण के स्मृति बने रहे, उससे बढ़कर कुछ और वरदान नहीं होता। उन्होंने मांगा, भगवान उसका वरदान सुनकर के कृतकृत्य हो गए, लेकिन जितने ग्वाल साथी सब खड़े थे वो सुने, ये क्या बोल रहे हैं, उसको समझ में नहीं आया क्या मांग रहा है, वो तो सब अनपढ़ है बेचारे गाय रखने वाले, बोले जो भी कहो बहुत सादा सीधा भोले भाला, मांगना आता ही नहीं, कुछ लेना नहीं चाहता, क्या करे अरे हम कुछ लाए नहीं साथ में, लेकिन दे देते ला करके, तो मांगो ना। लेकिन क्या करे, बहुत सादा सीधा है, भोला है, कुछ मांगता है? वो तो मांगा, सब कुछ मांग लिया, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा। तो उन्होंने बोले, कानू कुछ तो देना चाहिए, कुछ बोलो यार, वो तो कुछ नहीं मांग पाता, माली है नहीं कुछ बुद्धि ज्ञान उसका। भगवान ने बोले, सुदामा जो आप चाहते हैं वो तो अवश्य होगा, लेकिन मेरे तरफ से मेरे साथियों बोलने कुछ तो लेना पड़ेगा। वो तो कुछ बोल नहीं पाया। भगवान ने ऐसे उनके सामने खड़े होकर बृहद हस्त दे करके बोल रहे हैं, भगवान बोलते गए अपने आशीर्वचन से, मेरे ओर से मैं आपको अक्षय संपत्ति जो आपके वंश में हमसे बढ़ती रहे, आयु शौर्य जस बल ये सब मेरे ओर से दे रहा हूं, आपके वंश में हमेशा ऐसी कीर्ति बढ़े रहे। आप भगवान के मुख से निकला, दे दिए उनको। आज भी मथुरा के फूल मंडी में लोग सब एक से एक बढ़ करके हैं। हाँ, हजारों साल बीत गया लेकिन भगवत वाणी है ना। और भगवान ने आशीर्वचन दे करके अब निकलना था, संध्या से पहले अपना टूर खत्म करके वापस भी जाना है, तो निकल गए। लेकिन सुदामा वो क्या बोले, क्या कहे, क्या कहे, वो तो अपने भाव समाधि तक पहुंच चुका है। जो रूप उन्होंने सामने देखा कि वही इंदिवर सुंदर घनश्याम ने अपने कर कमल उनके मस्तक पर रखे और उनके ऊपर आशीर्वचन दे रहे हैं, उसको जो देखा, देख रहे कि भगवान सामने खड़े होकर के मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, इस छवि को अपने हृदय में बसा लिया, उसी को चिंतन में, उसी के भाव में पड़ा है। भगवान के हाथ कब उनके सर से उठा, कब दोनों भाई निकल गए, सखाओं भी सब निकल गए, चले गए, उनको पता ही नहीं। वो तो अपने भाव में बैठा है, आंख से धार धार आंसू बह रहा है, पूरे रुमावली पुलकित है शरीर में, वही चिंतन में भगवान के ये जो छवि, उनको आशीर्वाद देते हुए ये छवि उनके हृदय में बस गया। ये छवि किसका हृदय में एक बार बस जाए फिर निकल करता है क्या? कभी निकलता नहीं, केवल आना ही चाहिए। बड़े बड़े योगी साधन करते हैं इसको पाने के लिए, आना तो नहीं है, लेकिन धन्य है माली सुदामा, उनका तो ये सत्व ही बन चुका है, आज इसी को लेकर बैठा है, उन्होंने सब भूल गया। इसी अवस्था में उनको सिद्धि प्रदान करके भगवान ने दोबारा गली से होते हुए मथुरा के राज रास्ता पर फिर आ गए। गली से ज्यादा भीड़ नहीं गया था, जा भी नहीं सकता था, जाम हो गया था रास्ता। फिर मेन रोड को आ गए, अरे वो फिर भीड़ इकट्ठा हो गया। अब तो रूप कुछ अनोखा, क्योंकि रॉयल ड्रेस, उसके ऊपर फूलों में सज रहे हैं, ऐसे सज धज करके, और सभी दोनों कुमार के पीछे सारे गोप बालक, इसे अपूर्व शोभा, अपूर्व मनोहारी शोभा में मथुरा के राज रास्ता पर चलने लगे। दोनों तरफ से मथुरा जनपद के भरपूर नागरिक, सारे मन नेत्र प्राण लगे कर बैठे हैं उनमें, एक एक मुद्रा को निहार रहे थे। वो मत गजे के चाली में चल रहे हैं, जैसे दो गजराज, जुबक गजराज, छोटे छोटे गजराज सज करके अपने महिमा से चल रहे हैं, ऐसे दिखाई पड़ रहे थे, निर्भय चाली, सारे देख रहे हैं क्या दृश्य है। चलते चलते आगे बढ़ रहे हैं, पूरा भीड़ उनके पीछे आगे पीछे चल रहा है। थोड़े देर आगे चले कि नहीं, हटाते कि बीथियों से, गली से, भीड़ के अंदर से एक युवती आई, मुंह नीचे करके घुंटन खींच ली, मुंह नीचे करके बड़े बेग से चली जा रही है, हाथ में एक सोने की डालिया ले रखी है, उसके अंदर कई सोने चांदी की कटोरी रखी हुई है, उस कटोरे में नाना विविध प्रकार के, नाना प्रकार के रंग रंगीन सुगंधित चंदन आदि, कस्तूरी आदि, अंगराग, उपटन सब रखे हुए हैं। वो अपने नित्य प्रति जा रही थी इसी रास्ता में, वो चली जा रही है, क्या करे बिचारी, उनकी तो अभ्यास बन चुकी थी कि किसी को और देखेंगे नहीं, किसी को सुनेगी नहीं, अपने मुंह नीचे करके चल जाएगी। क्यों? क्योंकि विधाता ने उनको कुबड़ी बनाया। तो तीन जगह पर तड़ी, भले रूप गुण कुछ भी हो, लेकिन रास्ता में जो बालक हैं, तरुण है, उनके सामने आकर के उनके सामने ड्रामा करते हैं, अभिनय करते हैं, उनके चाली के व्यंग करते हैं, तो इसलिए किसी को और देखना नहीं चाहती, सुनना नहीं चाहती। कभी कोई तरुण आकर के उनके सामने रस व्यंग करके परिहास कर देते हैं तो जल भूनकर मर जाती हो, बहुत दुख लगती उसको, लेकिन झगड़ा नहीं कर पाती। क्यों? जानती है अगर मैं कुछ बोलूं तो और चिढ़वाएंगे, और चिढ़ाएंगे, और क्या करूं, तो अकेली हो तो सारे बाजार मेरे पीछे हो जाएगा। तो बेचारी अपने भाग्य को दोष दे करके और किसी की सुनती नहीं, बोले बराबर ऐसे करते हैं, टाई टपरा करते रहते हैं, किसी को सुनना नहीं, अपने ढांकी और नीचे करके बस अपना काम पर चली जाती। तो भीड़ के बीच में इस तरफ से राम श्याम के पीछे सारे गोप सखा जा रहे हैं, इधर से आ रही है, वो तो किसी को देखते नहीं, अपना रास्ता से वो किनारे होकर चल जाती है। कृष्णचंद्र ने आगे बढ़ गए, उसके पास चले गए, उसके सामने खड़े होकर के बोले, अरे सुंदरी तुम कौन हो, किसकी हो, ये सुंदर सुंदर अंगराग लेकर कहां जा रही हो? वो बिचारी जिस गली में निकल जाती वो चली जाए, लेकिन सुगंधी बिखर जाती, इतने सुगंधित द्रव्य लेकर जाती है, पूरा सुगंध बिखर रहा चारों तरफ। तो श्याम सुंदर ने पूछ लिए, तो उनका तो अभ्यास था किसको देखे नहीं सुने नहीं, तो उनका पहली बार वो खड़ी हो गई चलते हुए। जब उनका कर्ण में ये शब्द पहुंचा, गुंजा, हे सुंदरी मुझे कोई सुंदरी बोलती है, मुझे भी कोई ये बाजार में कोई सुंदरी बोलने वाले भाई क्या? लेकिन आज तो उसको कुछ अलग महसूस हुआ, ये कोई तरुण व्यंग करने वाले का स्वर तो नहीं है ना, ये कोई थट्टा तामसा का स्वर नहीं है, ये तो संबोधन उसका कान में प्रवेश करके हृदय तक मन अमृत फैला दिया। दृष्टि उठाकर देखी, कौन बोल रहा है? आप जब मुंह उठाकर देखी तो देखते ही रह गए, देखते ही रह गई, क्लीन बोल्ड खत्म, कुछ नहीं रहा उसका। उनके सामने उस इंदी बर सुंदर नीलमणि अपने राज वेश में सज धज करके खड़े हैं, मुंह में मुस्कान भर करके उनको पूछ रहे हैं, तुम कौन हो, किसकी हो, किसके लिए अंगराग ले जा रही हो, अगर ये अंगराग हमको दे दो तो आपका निश्चित अभी अभी कल्याण हो जाएगा। कुब्जा ने सुनी, वो तो देख करके मात हो चुकी थी, सम्मुख में इतने सुंदर रूप, अब ये पूछ रहे हैं क्या बोलेगी। कुब्जा सोच रहे मैं क्या बोलूंगी, मुझे पूछ रहे हैं मैं कौन हूं, किसकी हूं, मैं किसकी होने का सौभाग्य को तो ये मेरे कुबड़ी ने छीन लिया है, कुबड़ ने किसके होने ही नहीं दिया अब तक ना। विधाता ने उनको कुबड़ी तो बनाया जरूर, लेकिन एक कला तो दिया था उनको, उनके हाथ में अंगराग पीसने का, बनाने का और लगाने का ये बड़ा कला था। इस कला ने उनको राज सेविका बना दी। महाराज कंस के अंगराग की सेवा कर रही है उन्होंने, प्रतिदिन सुंदर सुंदर मूल्यवान अंगराग पीस करके महाराज के शरीर में अंगराग करने के लिए ले जा रही है, उसका डेली ड्यूटी है। तो महाराज के प्रधान सेविका के राज सेविका के कारण आज मथुरा सिटी में उनका अपना फ्लैट है, अपना निजी सुंदर भवन है, लेकिन क्या होगा, केवल धन और भवन तो है लेकिन इस कुबड़ के कारण अभी किसकी नहीं हो पाए दुर्भाग्य। वो क्या कहेगी वो, लेकिन वे पूछ रहे हैं कुछ तो बोलना होगा, मैं तो दासी हूं, हमेशा दासी रहा, कंस की दासी, लेकिन मन में आज उन रूप को देख करके कोई ग्लानी कोई दुख कोई सोचना नहीं है, मन बहुत प्रसन्न हो रहा है, बहुत प्रसन्न चित्त से बोलने लगी कुब जाने, हे कुमार मेरा नाम त्रिवक्रा है, मैं कंस महाराज की दासी हूं, मेरे हाथ के बिना किसी के हाथ में अंगराग पीसना और लगाना उनको रुचता नहीं है, तो मैं इसलिए कंस महाराज के दासी हूं, उनके अंगराग की सेवा कर रही हूं। और आप जो पूछ रहे हैं कि आपको अंगराग चाहिए, भले मैं राज सेविका हूं लेकिन आप जैसे पुरुष रत्न सुंदर पुरुषों के अलावा और कौन पुरुष है उनके योग्य इस अंगराग के लायक, आप ही तो केवल है, मैं आपको अंगराग सेवा कर सकती हूं। बिल्कुल डालिया उठा करके और साड़ी भीड़ करके चली गई सामने, तया भगवान के सामने आ गए, भगवान बोले इशारा किए, बड़े भाई खड़े हैं मेरे पास आगे, समाज देख रहे, ये टिकट है ना, तो समझ गई, बड़े भाई के पास चल गए, सबसे पहले श्री बलराम जी को अंगराग लगाने की सेवा करने की चली गई, लेकिन कहाँ लगाई, पूरे शरीर तो राज पोशाक में ढंका हुआ है, उसके ऊपर जहां तहां पुष्प माल्य ढंका हुआ है, पूरे सजे हुए, कौन जागा है अंगराग लगाने के लिए, केवल वो कपोल और भाल यही दोनों ही बची है जहां पर वो उनके कलाकारी करेगी। तो बस मुख चंद्रमा को चंदन से चर्चित करना था, बलराम के सामने चली गई, वो तो विशेषज्ञ है अंगराग में, बिल्कुल चून करके श्वेत चंदन कस्तूरी कुमकुम आदि लगा करके बलराम के और मस्तक पर भाल पर और कपोल पर बहुत सुंदर पत्रावली और खोर आदि बनाई, उनके हाथ में कला थी, बड़े चित्रकारी से बड़े सुंदर बना दी, उनको बना करके कृष्ण के पास आ गई, उनके अनुरूप चंदन, उनको श्वेत चंदन था, उनको केसर युक्त चंदन, केसर कस्तूरी तिलक अंग ललाट पटले, उनको भी सजाया, केसर कस्तूरी दे करके बड़े सुंदर पूरा मुख चंद्र को, और उसके बाद सारे गोप सखाओं को सब सजा दिया उत्तम कोटि के अंगराग देकर। अब सारे देख रहे हैं, नगरवासी देख रहे हैं कि भाई भाई देखो है, महाराज कंस के काल बड़े फेस्टिवल है, राजा के पूरे नगर के वार्षिक उत्सव महान उत्सव धनुर्यज्ञ होने जा रहा है, वो ड्रेस रास्ता से हड़प लिया, किडनैप कर लिया करके उनको वो ड्रेस लेने वाले को मार मुर कर खुद पहन लिया सारे ड्रेस। अब देखो महाराज के अंग में अंगरा उनको भी छीनने बटाए, और वो बूढ़ी दे भी रहा है उनको कुबड़ी, आप क्या हो, तो जाओ सब खत्म कर दिया, सब पहन लिया महाराज कंस अपने शरीर में जो अकेले लगा सारे वो पहन लिया, सब सिमुख में लगा लिया, उनको कुछ अचरज नहीं लगा, लगते तो बहुत सुंदर, कंस पता नहीं ये इतने विकट विकराल शरीर में इतने सुंदर अंगरा क्या लगा, ये कितना सज कितने सुंदर देख रहे हैं, बहुत अच्छा सुंदर तो लग रही है, जो भी करे दासी तो अच्छा की त्रिवक्रा ने। लेकिन त्रिवक्रा ने चंदन चर्चित की वैसा कर बेस करके अब आ गई सामने, सामने आकर के फिर खड़ी हो गई, घूम फिर के फिर कृष्ण के सामने आ गए। अब सब देख रहे हैं एकटक अब क्या होने वाला है, कृष्ण ने सभी के सामने उनको वचन दिए थे, अगर तू हमको अंगराग लगा दोगी तो अविलंब आपका कल्याण होगा। सारे सुने थे बात, क्या कल्याण होगा, क्या कल्याण होगा, कौन जाने। उनके गोप सखा तो सब कर रहे थे, पता नहीं हमारे ये श्याम बड़ा नटखट है, जाने जिसको जिसको छेड़ देता जाकर के। अरे वो बिचारे जाते थे उनके पास, चलो उनको भी छेड़ दी। अच्छी तो है बिचारी, देखने के लिए बड़ी सुंदरी है, रूप उनका बड़े बड़े आंख, टेढ़ी भौं, रंग अधर, उज्जवल जंतावली, सिंदूर से घुले हुए दूध के समान वर्ण, इतने सारी सुंदरता तो दी लेकिन कुबड़, सब खत्म, सब जीरो कर दिया इतने सब होते हुए। हाय हाय बिचारी, अगर ये ना होती कितने अच्छी होती। सब गोप सखाओं का मन में भी उनके प्रति दया आ गई, तो अंतर्जामी भगवान सामने आ गए। वो तो बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। श्याम सुंदर बोले, देखो चंचल मत हो ना ज्यादा, यहीं खड़ी रहो। वो बिचारी क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं पाई, हड़बड़ी उनके सामने में, चंचल नहीं हूं, यहीं से खड़ी रहो, क्या करने के लिए बोल रहे हैं। और सब देख रहे हैं। श्याम सुंदर आगे बढ़ गए, बढ़ करके वो खड़ी थी, दोनों पैर उनके, दोनों चरण उनके एक पैर के ऊपर दबा रखे, सबके देखते देखते पैर को दबा करके दक्षिण हस्त के मध्यमा और अनामिका ये दो अंगुली उनके ठोड़ी में लगाए, सब देख रहे, थोड़ी में लगा करके एक झटका दे दी, कड़क करके साउंड हुआ, बस हो गया ऑपरेशन, बिल्कुल सीधी हो गई, बिल्कुल सीधी हो गई, ऐसे सीधी हो गई। सारे लाखों समाज देख रहे हैं कि कभी कुबड़ी थी ही नहीं ना, हमेशा सीधी ऐसी थी, केवल सीधी नहीं हुई, वो कुब्जा ने आपको देख रही है आश्चर्य होकर के, सारे ग्वाल बाल देख रहे हैं, सारे नगर जन भी देख रहे हैं, ये तो केवल सीधी नहीं हुई, मानो सारे सौंदर्य की घटा बरस पड़ी उनके ऊपर। ऐसे लग रहा है जैसे कोई स्वर्ग के अप्सरा आज मथुरा के राज रास्ता पर उतर आई, ये तो कोई इस धरती का नारी नहीं लगता। अरे भगवान जिसको ब्यूटी दे दें तो फिर अब इतनी सुंदरी हो गई। अब भगवान ने उनको रूप दे करके पीछे हट गए, और लेकिन हट गए लेकिन अब उनका हाल तो बुरी हाल। त्रिवक्रा ने उनका और क्या कहें, पूरी भरी रास्ता राजरस, दोनों तरफ से लाखों जनता भीड़ है, घर द्वार छात ऊपर से सब खचाखच भीड़, सामने बड़े भाई बलराम खड़े हैं, पीछे सारे साथी खड़े हैं, कुब्जा सुंदरी को कुछ नहीं देख रहा है दुनिया में, केवल उस इंदिवर सुंदर पुरुष रत्न, उनके अलावा जीरो, कुछ नहीं दिख रहा है उनको, कुछ देख ही नहीं रहा है, शर्म क्या होगा फिर, तो अकेले खड़े हैं उनको लगता है। उनको लगा क्या इतने सुंदर पुरुष इतने समीप आकर के फिर हट गए, मुझे स्पर्श करके फिर हट गए, ये कैसे हो सकता है। आगे बढ़ गई सबके सामने, देखते जा करके उनके पटुका उनके अंग वस्त्र को पकड़ ली, उत्तरी को पकड़ ली, पकड़कर खींचने लगी, हे वीर चलो मेरे साथ में, चलो हम घर चले, इधर क्यों खड़े हो, चलो। अरे सारी दुनिया देख रहा है कि बीच बाजार में इसे क्यों कर रहा है तूने, लेकिन वो तो आज पगली नहीं गई है, उन्मादिनी हो चुकी है। भगवान पूछे क्या बात है, खाने के लिए बुला रहे घर में, नहीं नहीं आज तो मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, चलो मेरे साथ में। भाई किस लिए बताओ, क्या कारण है, सब लोग देख रहे हैं, कुछ अलग सोचेंगे, भाई क्या बात है, नहीं नहीं आपको चलना है, क्यों, आप जो मुझे स्पर्श किए अब मेरे चित्त को अपहरण कर लिए हैं, मेरे मन मेरे चित्त तो आपके लिए ही मथित हो रहा है, तो मुझे और आप कष्ट मत दीजिए, चलिए मेरे साथ। अब खींचने लगे, आप कृष्ण भगवान ने देखे कि तो समाज के बीच में, भीड़ के बीच में इसे कर रहा है दस्त। भगवान ने बलराम की ओर देखे, अग्रज की ओर। बलराम को शर्म लग रहा था, बोले क्या करूं मैंने। पीछे सखाओं को देखे और बाकी लोगों को देख देख के हंस पड़े, बोले ये अरे सुंदरी तू ठीक है, बड़े कृपा है हमारा पर, हम तो रास्ता में चलते हुए पथिक, हमारा कोई घर घाटी थोड़ी है, एड्रेस है क्या, क्या पता हमारा, क्या हमारा कुछ आईडी प्रूफ पता है हमको, बेघर वाले हैं ऐसे ही। तो ठीक है, फिर भी हमारा बिना आईडी देखे पूछे हमको बुला रहे घर में, तो बड़े अतिथि वत्सला हो आप, खूब अतिथि सेवा करना जानती हो, इसलिए हमको बुलाते हो विश्वास करके। कोई बात नहीं, हम अभी कुछ काम में जा रहे हैं, आपका घर में आएंगे, अभी मथुरा में है, आपका घर में आएंगे, चिंता मत करो, अवश्य आएंगे। तो उन्होंने अब पटुका छोड़ दी, क्यों, क्योंकि जब वही शब्द उनके कान में आया कि तुम्हारे घर में अवश्य मैं आऊंगा, तो मन में सोची ना अब तो मैं कंस की दासी नहीं, इनके श्री चरण की दासी हूं, दासी को दासी के कर्तव्य करना चाहिए, मैं हट नहीं करना चाहिए, अगर हट करूंगी तो रुट जाएंगे, फिर क्या हो, फिर नहीं आएंगे तो फिर तो सब गड़बड़, नहीं आज तो मैं हट नहीं करूंगी, आज तो मैं केवल आज्ञा पालन ही करूंगी, दासी का धर्म है उनके आज्ञा का पालन करना, वो मुझे बोल रहे हैं कि जाओ मैं आऊंगा, तो ठीक इसी विश्वास को लेकर मैं चलेगी। त्रिवक्रा सुंदरी सैरेन्द्री सुंदरी चल पड़ी अपने भवन की ओर, कंस महाराज की ओर गई नहीं, आज से भी जाएगी भी नहीं। अब जब चंदन पीसेगी तो इन रूप के लिए पीसेगी, इस पुरुष रत्न के लिए। वो तो सैरेन्द्री सुंदरी अप्सरा बन करके जा रही है, दोनों तरफ से खचाखच भीड़, जो लोग देख रहे थे सभी का मन में बहुत उल्लास, देखो कि अद्भुत कार्य है, निश्चित रूप से भगवान वासुदेव हैं, वो इस प्रकार के भावना कर रहे थे। लेकिन जो बड़ी बड़ी भवनों के छात के ऊपर छज्जों में और गवाख्यों में खिड़कियों में जो पूर्व नारियां मथुरा के वधू और कुमारी सब नजर लगाकर बैठी हुई थी, उनकी दशा क्या हो रहा है। वो नजर लगाकर बैठी थी, उन्होंने देखी कि एक कुबड़ी दासी, कितना सौभाग्य था उनका, उनको इन त्रिभुवन सुंदर का इतने सामीप्य मिला, स्पर्श मिला, दर्शन मिला, अरे उनको तो स्वर्ग की देवी बना दी उन्होंने, और हम लोग ऐसी तुच्छ कुल ललनाएं, अपने कुल और घर की लज्जा को लेकर के घर से बाहर नहीं आ पाती, घर में बैठी बैठी क्या दशा हो रहा, कुछ नहीं मिला हमको, अरे हमको भी दसी करके स्वीकार कर लेते, हाय हाय कितनी दुर्भाग्य है, कितनी दुर्भाग्य है। उनका शरीर सुदबुद्ध हो गया, खूब रोने लगी, सब मिलकर के रोने लगी, बहुत प्रयास करने पर भी उनका रोने का बेग को रोक नहीं पाए, सब मूर्छित प्राय होकर गिर पड़े जहां था। हमारा क्या दुर्भाग्य है, ये देखो हम भी अगर सड़क में उतर जाते शायद हमको भी स्पर्श दर्शन मिल जाता। हाँ, इस प्रकार सभी को, जितने पूरा नारियां सबको अधमूर्छित करके त्रिवक्रा को देवी बना करके अब राम श्याम आगे बढ़ रहे हैं। अब तो और सुंदरता बढ़ गई, क्या हाँ, अब भाई ड्रेस पहने थे रॉयल ड्रेस, फिर माला पहने पुष्प सज्जा, उसके ऊपर चंदन वेश, अब तो देखने बनी, किसके पास कैमरा होता हो तो फोटो ले लिया होता, लेकिन तभी जमाने था नहीं। लेकिन सब अपने अपने नेत्रों के द्वारा, मन के द्वारा, सब अपने अपने हृदय पर उतार रहे थे इस फोटो को, सब उतार रहे थे, जितने प्रिंट हो सके इतना उतार रहे थे। अब तो जो जनमानस था उनको मन से तो भय निकल गया, बोले आ कितनी उदार है, वास्तविक हित भगवान। देखो ना, बस पहन लिए उनका मर्डर करके, और वो एक दर्जी था वो भी आया उनके पास, आकर के उनको सिलाई किया, उनको पोशाक ठीक कर दिया, उनको भी बात किए, उनको भी वरदान दिए। अरे माली सुदामा का घर में चले गए जहाँ खा पी रहा है, ये देखो कुबड़ी दासी था, उनकी भी अपना बना ली, इतनी बना दी, इतनी कर दी, सुंदरी कर दी। वो तो किसी को पराया नहीं मानते, सभी अपना है, तो उनको क्या डरना है। अब तो दोनों तरफ से छोटे छोटे बालक बालिकाओं तक भी हाथ में आरती के प्लेट लेकर के दुर्बांग करो आरती लेकर तिलक करना खत पकना सामने आ जाते थे। अब डरना नहीं, अरे तो सबको अपनाते हैं, हम क्यों पीछे खड़े रहेंगे, हम भी चले। आशा यही है जब ये कुबड़ी को छू लिए, ये इतनी बड़ी बन गए, हमको भी थोड़े देख ले छू ले कुछ तो हम भी हो जाए। सब आ करके प्रणाम करना और अर्पण करना ये करना सब बढ़ गया जा दोनों तरफ से। अब चलने में थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि दोनों तरफ से बहुत भेंट आता है, बहुत प्रणाम, बहुत आरती अर्चना शुरू हो गया। तो लेकिन जब वृंदावन से निकले थे, जब इन्विटेशन अक्रूज ने दिए थे, जो इवेंट लिखा था उसमें मुख्य इवेंट क्या था, धनुर्यज्ञ। धनुर्यज्ञ का बात सुन करके सारे गोपों ने खूब प्रशंसा बात कर रहे थे, अरे ईसा धनुष से, ये धनुष ईसा धनुष खूब सुने थे। तो आजकल तो दर्शन के लिए मन में यही आशा लेकर आएंगे, धनुष थोड़ा देख लेंगे आज कहाँ रखा है। कृष्णचंद्र ने पास में चलते हुए एक बूढ़ा नागरिक को पूछे, वृद्ध को, बोले चाचा जी ये जो धनुष है कंस महाराज का वो कहाँ है जिसका यज्ञ होगा। नारे बेटा वो तो धनुषशाला में है, यहां से दूर है, दूर है धनुष। कौन सा धनुष, कैसे है? अरे उस धनुष का क्या कहूं, ये तो भगवान शंकर के अपनी धनुष है। भगवान शंकर जो त्रिपुर विनाश करने के लिए जो पिनाक व्यवहार किए थे उसको तो महाराज निमी को दे दिए थे, जिनको भगवान राम ने त्रेतायुग में तोड़ दिए थे जनकपुर में। जो अपने निजी धनुष था वो अपने प्रिय शिष्य परशुराम को दे दिए थे शंकर भगवान, और परशुराम ने कंस को दिया था उसको, महेंद्रगिरी में जाकर उनका सद मुलाकात हुआ। तो कंस ने उनको बहुत मेहनत करके वहां से लोड करके ढो करके लाया था, ला करके उनको एक विशाल भवन में उनको रख करके खूब पूजा उजा करता है, वही रखा है। बहुत विशाल धनुष, बहुत भारी इस धनुष है। तो फिर पूछे श्याम सुंदर ने, ये धनुर्यज्ञ क्या होता है, फिर ये इवेंट क्या होता है? ना ये धनुर्यज्ञ क्या, वो तो कभी कभी महाराज का इच्छा हो या पुरोहित सत्य जी कभी बोले कोई विशेष काम के लिए तो ये उत्सव होता है। ये एक महेश्वर यज्ञ है, भगवान महेश्वर के लिए यज्ञ होता है, और इसे कई साल से हुआ नहीं है, इस साल से अभी फिर कर रहे हैं, बहुत साल पहले हुआ था। क्या होता है उसमें, ना होता क्या है, हमारे मथुरा के अधिपति भूतनाथ भूतेश्वर जी हैं, उनको बड़ा भारी अभिषेक होता है, खूब पशुओं के बलि चढ़ाया जाता है, वहां तंत्र से पूजा होता है, और इधर ये महाधनुष को रंगशाला में लाया जाता है स्टेडियम में। और जब धनुष उत्सव होता है धनुर्यज्ञ, तो महाराज की घोषणा होता है कि पूरे जनपद से प्रत्येक नागरिक को आना अनिवार्य है, सबको आना पड़ेगा। तो फिर सब आके बैठते हैं, तो महाराज स्वयं जाकर के धनुष को अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद फिर राज की घोषणा होता है, क्या न कोई उपस्थित समाज में कोई ऐसे व्यक्ति है जो आकर के इस धनुष को उत्तोलन करे, बारंबार घोषणा होता है। और उसके साथ ये भी घोषणा होता है, कोई अगर उत्तोलन नहीं कर पाया, उठा नहीं पाया, तो उसी को इस धनुष को बलि चढ़ा दिया जाएगा। तो सेकंड घोषणा सुनकर तो खत्म, कोई नहीं आगे, कोई मानो उठते थे थोड़ा में ताकत लगा, वो खत्म, बोले बलि चढ़ा जाएगा भाई, बायचांस कुछ गड़बड़ हुआ तो गया, तो कोई नहीं आते थे। अभी तक जितने बार उत्सव हुआ है, बूढ़ा ने बोला मैं देखते हूँ कभी कोई नहीं आया गए ना, फिर ना लोग कहते थे कि अगर पूरे भारतवर्ष में कोई दूसरा पुरुष हो तो ये हमारे महाराज कंस के ससुर साहब जरासंध वीर वो शायद उठा सकता होता, लेकिन वो अपने जामाता के उच्छमक में आए नहीं, तो इसलिए कोई नहीं आते थे उठाने के लिए। ना फिर क्या, फिर घोषणा तीन बार चार बार होके बंद हो जाता था, फिर थोड़ा रुक करके महाराज कंस स्वयं खड़े होते थे और जा करके स्वयं उठाते थे, वो भी आधमरा हो जाते थे, पसीना से लथपथ हो जाते थे उठाते उठाते, बहुत भारी धनुष था, उठा करे बड़े मुश्किल से तो उसमें डोरी चढ़ाते थे, बड़ी ताकत लाकर डोरी चढ़ाते थे, फिर ना फिर सरसंधान बाण किसी ने कोई लख्या। महाराज घोषणा करते थे कि ये सांभव धनुष है, उसको पूजा करके उठा गया मतलब उसको कोई बलि पूजा चाहिए, नर बलि चाहिए, तो नहीं तो तृप्त नहीं होगा। तो फिर ना क्या, फिर बाण आंख बंद कर छोड़ते थे, किसको ना किसको क्या, पूरे प्रदेश के नागरिक तो कंपलसरी आना है, लेकिन किसको क्या पता कि किसका आज यही काम बढ़ेगा। जैसे बाण छोड़ते थे चित्कार करके कोई गिर पड़ता था, किसी को लगता था बाण, ओहो, बोलते बोलते बूढ़ा ने रो पड़ा, पीछे हट गया, कितने निर्मम कार्य है। तो सारे ग्वाल बाल ने सोचे कैसा धनुष इतने बड़ा ना, हम तो बताओ कहाँ किस दिशा में कौन सा रोड में जाने से पड़ेगा, कौन सा रोड में। तो उस व्यक्ति ने बोला क्यों इसे नर रक्त से दूषित इस धनुष को देखने के लिए क्यों इतना उतावली है, उनको क्यों देखने जाते हैं। नहीं नहीं थोड़ा देखेंगे, अरे वो बहुत भारी धनुष है, उनका तो बहुत राजभवन के पास में एक बड़े भवन है, विशाल भवन, इस विशाल भवन में वो रखा गया, एक बेदी बना गया सोने के बेदी, उस बेदी के मंडप के ऊपर उसको रखा गया और लगभग कई सैकड़ों सशस्त्र सिपाही 24 आवर ड्यूटी करते हैं, नॉन स्टॉप ड्यूटी, उनको देख रेख में है, कोई अंदर नहीं जा सके, महाराज स्वयं जाते नहीं तो उनका स्पेशल परमिशन बिना कोई अंदर जा ही नहीं सका। किसी को कोई देखना है उनके जो मुख्य द्वार है, द्वार से बाहर में बस अंजलि उठाकर प्रणाम कर लो, वही दर्शन कर लो, चले जाओ। तो आप लोग को देखना है तो दूर चले जाओ भाई, नहीं तो हमको डर लगता, क्यों ना पता नहीं महाराज को पता चलेगा, ये हमारे देश के लोग, हमारे लोग उनको बच्चे को लेकर आए इधर, तो हम तो वही नहीं जाएंगे, हमको मत पूछो। लेकिन बच्चे पूछते हैं तो कुछ तो बोलना पड़ेगा, पूछते पूछते आगे बढ़े तो गोप सखाओं में बातचीत चल रहा है, तो कृष्ण अर्जुन को बोल रहा है कितने बड़े धनुष होगा, इतने बोलते बहुत भारी, बड़ा धनुष उठा नहीं सकता, क्या हमारे गिरिराजी से ज्यादा भारी है, गिरिराजी से ज्यादा भारी होगा क्या इतने तो नहीं होगा, अगर भारी होगा तो हम सब मिलकर उठा लेंगे, उसको तो कृष्ण अकेले उठा दिए थे, उसको हम सब मिल जाएंगे, हम इतने हैं सकड़ो हैं उठा लेंगे। तो कृष्ण अवतार देखो मुझे उठाना पड़ेगा, तो भद्रगुप्ता देखो बाबा ने बोला आपस में झगड़ना नहीं, ये कन्हैया ही है ना, हर काम से आगे चल, अगर वो चाहेगा उठाने को उनको पहले दे दो, नहीं उठाएगा दाऊ तो है फिर हम देख लेंगे साथ में, क्या पहले चांद हम उसको देते हैं, आपस में बातचीत चला के उठाने का बताओ। अब सारे जनपद के नगर जन सोच रहे हैं कि भाई वो आगे बढ़ते चले जा रहे धनुर्भवन की ओर, सच में क्या उसको जाएंगे ना क्या उसके पास, बातचीत करें, उठाने का उसको। दूसरा नगद, अरे पागल कंखे, सैकड़ों सैनिक पूरा सशस्त्र खड़े हैं, किसी घुसने देंगे कैसे, उनके पास जा सकेंगे ना। बात तो सही है लेकिन एक बात क्या ना, अरे वो अगर जाना चाहेंगे उनको भी रुक पाएगा, मुझे नहीं लग पाएगा अगर जाना चाहेंगे रुक पाएगा ना। अरे ऐसा थोड़ी, सब खड़े हैं सशस्त्र वाहिनी, इसे कोई छोड़ देंगे ना। अगर अंदर चले गए तो क्या करेंगे, देख कर आ जाएंगे, इतने भारी धनुष तो हम देखते नहीं ना, भारी धनुष तो है, हमको तो डाउट हो रहा है भाई ना। क्या डाउट, अरे भाई जियो हाथ छू करके ये बूढ़े दर्जी को जवान बना दिया, ये सुदामा माली को भी तरुण बना दिया, इसी कुबड़ी बूढ़ी की तो सुंदरी अप्सरा बना दी, अब उनको छू देने से क्या हो जाएगा, वो स्पर्श करें कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। हाँ मुझे नहीं लगता कि वो छू दे कुछ हो जाए, क्या पता ये भारी हल्का भी हो जाए। अरे ये कोई साधारण वस्तु थोड़ी है, ये संभव धनु है, कोई जड़ वस्तु थोड़ी है, देखना। परशुराम तकुसु रखे थे, ये भगवत अस्त्र है, वो बच्चे क्या करेंगे उसका। विभिन्न प्रकार के मिली जुली प्रतिक्रिया नगरजनों में, आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब दिखाई पड़ा विशाल गेट उस धनुशाला का, बहुत ऊंचाई से बड़े भव्य रूप से सजा हुआ था, बहुत रंग बिरंगी से सजावट हुआ था। वो देखे लोग बोले वही गेट है ना, उसी गेट से देखे ना, सिपाही बड़े बड़े मोटे मोटे तगड़े मूछ वाले खड़े हैं ना। अब दौड़े बच्चों हैं, उत्साहित होकर दौड़ पड़े, दौड़ कर गए भद्र जाकर देखा, बोले मैं देख लिया, मैं देख लिया इंद्रधनुष। अरे गिरिजा जी से बड़ा थोड़ा है, नहीं बड़ा नहीं, इतना बड़ा नहीं, सही में इतने विशाल धनुष जिनको कई सकड़ लोग सकट में रख करके खींचे खींचे लाते हैं रंग भवन में, वो धनुष ये पूरी भवन के अंदर, ये केवल विशेष भवन, केवल धनुर्भवन है, राज भवन के पास बनाया गया विशेष भवन, उसके वेदी के ऊपर रखा गया है, विशाल प्रांगण है, उसके बीच में वेदिका है, उस वेदी के ऊपर धनुष रखा गया है, कई प्रकार के रत्न जटित उसके ऊपर पाट वस्त्र से उसको ढांका गया है, कई प्रकार के पुष्प सिंदूर आदि देकर के चढ़ाया गया, उसको पूजा किया गया है, और चारों तरफ सशस्त्र वाहिनी सैनिक उनको देख रहे, हमेशा निगरानी में रखें कि कोई पास आ ना सके। तो लोग बच्चे जाकर देखे, बाकी लोग तो भीड़ जो जा रहा था दूर से देखे, इसे प्रणाम करे चल दिए, धनुष वहीं से दिखाई पड़ता रखा है, लेकिन ये बच्चे लोग देखे कि उतावली होकर के थोड़ा अंदर जाए, तो जो बड़े बड़े मोटे तगड़े सिक्योरिटी थे गेट पर अस्त्रधारी, वो लोग देखे इन बच्चों को, वो देखना चाहते हैं, सब बच्चे आना चाहते हैं, वो सोचे कितने सुंदर बालक है, कितने सुंदर चेहरा उनका, कितने बढ़िया दिख रहे हैं सज धज करके। बेचारे हम सुने कि ये सब गाँव से गवार हैं, जंगली गाँव गाँव से आए हैं, कभी सिटी में पहली बार आए हैं, धनुष को भी देखे नहीं, यहाँ के नियम मर्यादा उनको पता ही नहीं है कि यहीं से आगे जाना नहीं है, ये उनको नियम पता नहीं, कानून, बच्चे हैं बेचारे, थोड़ा आगे जाकर देखना चाहते हैं, देखने दो बच्चे हैं क्या है। तो सिक्योरिटी थोड़ा ढीला पड़ गया, बोला देखो बच्चों यहाँ तक जाना, देख लें दिखाई पड़ता ना, और थोड़ा और ना बस, और आगे नहीं जाना, देखना बच्चों यहीं देख कर आ जाना। कीड़े मासूम बढ़िया बच्चे, सुंदर बच्चे है रे, कई सिक्योरिटी खड़े थे, बच्चे थोड़ा आगे बढ़ गए, अरे नहीं और आगे नहीं जाना, वहीं से देख कर आ जाना, यहीं से देख कर आ जाना, कोई सुन रहा है वहीं खड़ा हो रहा है, लेकिन श्याम सुंदर तो बड़े चपल है, वो दौड़ पड़े, अरे ये बच्चा क्यों दौड़ रहा है, हे मत जाना, जाना नहीं, जाना नहीं, वो बोलते कौन सुनता, वो तो दौड़ पड़े, दौड़ पड़े, सिक्योरिटी देखे अरे बच्चा दौड़ के जा रहा है धनुर्वेदी के पास। अब सारे सैनिक अस्त्रधारी दौड़ पड़े, बोलने में सुनने में तो दूर देर लगता है, टाइम लगता है, इतने में तो चंचल चरण जाके पहुंच गए और चढ़ गए वेदी के ऊपर कूद करके, चढ़ गए, अरे रुको रुको रुको, छू मत उनको, छू मत, बोलने से क्या होगा, छू कर जाके उठा भी लिए, देखते देखते उठा करके एक पैर में दबा कर दूसरे पैर में आप जिया चढ़ाने लगे, डोरी बांध ली उसमें। अरे वो तो देख करके अस्त्र दिख रहे, ये बच्चा जिसको हमारे महाराज कंस को घंटे लगता था पसीने से स्नात हो जाते थे, ये उठा करके डोरी चढ़ा दिया, डोरी चढ़ा दिया। अरे क्या करेगा क्या करेगा, चारों तरफ से जितने और सिक्योरिटी सोए थे, नाइट ड्यूटी वाले जो थे वो भी सब उठ गए भाई। 24 आवर ड्यूटी चलता था ना शिफ्ट, जो अभी शिफ्ट में थे बाकी दो शिफ्ट वाले रेस्ट कर, कोई नहा रहे थे, कोई खा रहे थे, कोई सो रहे थे, सब दौड़ कर, अरे देखो ये आकर के बच्चा धनुष उठा लिया, डोरी चढ़ा लिया, डोरी चढ़ा लिया, हल्ला गुल्ला हो गया। सब चारों तरफ से अस्त्र शस्त्र लेके दौड़ पड़े, दौड़ कर आवे वेदी के पास, बड़ा प्रांगण था घर के, भवन घर के अंदर, दौड़ करके अल्टर के पास पहुंचे। इतने समय तो लगेगा ना दौड़ कर आएंगे, वो तो आधा तक पहुंचे, इतने में देखे कि उनके हाथ में दबाई इतने जोर से कि मंडलाकार हो गया, बिल्कुल घूमते गया, बैंड होते गया, बैंड होते गया, देखते देखते आधे परे जैसे 100 वज्रपात एक साथ में हो, सकड़ो वज्रपात, इतने भीषण शब्द हुआ, इतने भारी धमाका शब्द हुआ कि बेचारे सकड़ो सिक्योरिटी जो अस्त्र शस्त्र लेकर गए थे उनका हाथ से सारे अस्त्र शस्त्र गिर पड़ा, सारे रक्त सूख गया उनके शरीर से, धमाके सब मूर्छित होकर गिर पड़े। क्या हो गया, इतने भयानक शब्द हुआ। कंस महाराज अपने राजसभा में जो सिंहासन बैठता है, सिंहासन के छत्री गिर पड़ा, छत्री टूट गया। कंस महाराज हो क्या हुआ, उठे तो उनका मुकुट खींच करके कोई फीट दूर में जाकर गिरा। पूरे मथुरा नगर के बड़े बड़े भवन की भित्ति भिलती हल गया, अर्थक्वेक में जैसे होता है। जितनी पशुशालाएं थी सारे पशु हम रस्सी छिड़ा करके आवाज करके जहां तहां भाग निकले। बड़े बड़े पेड़ में कई पक्षी बैठे थे, चीख करके सब गगन के ऊपर उड़ गए, इतने भारी शब्द। क्या हुआ क्या हुआ, वो तो बेचारे रक्तहीन हो चुके थे सारे सिपाही, सबका मुंह सफेद पीले पड़ चुके थे। क्या होगा क्या होगा, तोड़ गया धनुष, तोड़ दिया, हमारा नौकरी जाएगा, महाराज क्या करेंगे, अरे नौकरी क्या जाएगा, मार देगा राजा, छोड़ेगा नहीं, तो क्या कर रहे थे सारे, अरे सभी लोग आगे कही कर, अब क्या करें बेचारे, तोड़ तो गया। कुछ समय तक तो बेचारे ऐसी अवस्था में रहे, थोड़ा चेत आया, सावधान हुआ, अरे पकड़ो पकड़ो, और कोई उपाय नहीं था, उनको पकड़ करके राजा के पास पेश कर दें, यही एक उपाय था, नहीं तो क्या करें बेचारे। चिल्ला सब पकड़ो घरो बांध लो उनको, किसी एक को जाने नहीं देना, सब पकड़ो चलो, और सब फिर उठ करके दौड़े। बलराम जी ने देखे कि इन बदमाशों ने उनके अनुज को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, अच्छा तुम्हारे मैं होते होते मेरे भाई को पकड़ेंगे। अब वो दौड़कर पास पहुंच चुके थे, भगवान कृष्ण उसको तोड़ करके डंडा को देख करके बलराम को देखे, बोले भैया वो लोग बोलते थे लेकिन बहुत पुराना हो गया था, जीर्ण कीड़ा खा गए थे उसे शायद, बहुत पुराना जीर्ण शीर्ण हो चुका था, टूट गया, मैं तो उठाने से मैं नहीं तोड़ा, मैं टेस्ट करते करते तोड़ गया, बहुत भारी प्रशंसा कर रहे थे, कुछ नहीं था, दम था उसमें, बहुत पुराना था, तो मेरा क्या दोष है, मैं नहीं तोड़ा। तो लेकिन ये दौड़ कर आ रहे हैं, दौड़ कर आ रहे हैं, तो बलराम जी भी एक खंड उठा लिए, वो फेंक दिए थे दोनों खंड, वो दूसरा भी दोनों खंड, दोनों कुमार दो खंड धनुष खंड उठा लिए, उठा लिए, और इधर से द्वार पर खड़े थे बाकी सारे बच्चे, सब अपने अपने लकुट उठा लिए। कनू डरना मत, हम है इधर, बोला हम भी चलेंगे, अब सब तैयार हो गए जाने के लिए, पिटने के लिए। ये 5-6 साल के बच्चे हैं, उनको कोई भय नहीं, कृष्ण के साथ में रहने से फिर भय क्या। कृष्ण ने देखे अगर वो बच्चे आ जाएंगे तो वो भी बेचारे जख्म हो जाएंगे, तो भगवान ने वहीं से आवाज दी, अरे डर मत, ये सब राक्षस है। अच्छा राक्षस है क्या, तो कोई बात नहीं, पुल डाउन, सब अपने लकुट हटा दिए, फिर कोई जाना जरूरत नहीं, कन्हा अकेला काम कर देगा, अगर मनुष्य होते तो हम जाते, राक्षस है फिर क्या जाए। उनका पूरा समझ था कि मनुष्य तो फिर लड़ाई फड़ाई करते हैं, ताकतवान होते हैं, राक्षस लोग जो होते हैं देखने में खूब भारी मोटे तागड़े काले पीले होते हैं, खूब गर्जन तर्जन करते हैं, लेकिन बल कुछ नहीं, थर्माकुल बड़ी होता है उनका। अगर उनका पास बल ताकत होता, हमारा सबसे छोटे ये कन्हैया ने अकेला उसको मार देता। डेली हम देखते हैं ब्रज में कितने असुर मारा है, वो तो सब थर्माकुल बड़ी, कुछ नहीं होता उनका। खैर चिल्लाते हैं, गुर्राते हैं, बड़े मोटे शरीर कले पीले, होता नहीं कुछ। तो उनको तो ऐसे अकेले मार देते, हमारा क्या हेल्प चाहिए उनको, चल क्यों लाठी उठाएंगे, वो डाउन कर दिए। अरे आख्या से तो कोई बात नहीं, कोई और होते, मनुष्य होते, बच्चे होते, हम जाते हेल्प करने के लिए, तो गए नहीं, खड़े हो गए। अब खड़े होकर देखना था उनके हस्त चालना। भगवान ने गाय चराते समय खूब लाठी चलाए थे, लाठी खेल खेल लेते आपस में, तो यहां तो लाठी तो था नहीं, अभी धनुष के दंड था, भग्न धनुष के दंड था हाथ में। अब न जाने कई सैकड़ों सिपाही सशस्त्र दौड़ पड़े थे, पूरे जीव जान लगाकर कैसे पकड़ो मारो, कुछ भी करें, ये बच्चे तो गए, उनके अब मरेंगे कि नौकरी जाएगा, क्या होगा उनका बेचारे। लेकिन कहां पहुंच पाए, दोनों कुमार धनुर्दंड उठा कर, भग्न दंड उठा करके एक एक आघात देते थे, जहां तहां आघात पड़ता था, एक साथ में दो दो चार चार का मत्था, भुजा, पगड़ी हगड़ी सब वहीं से चूर चूर होकर गिर पड़ते थे। बहुत कम समय लगा, देखने कुछ नहीं मिला, बहुत जल्दी ही मांस के लोथड़ा बिछ गया, पूरे प्रांगण रक्त हो गया, समाप्त हो गए, सारे सिपाही मर गए। तो वहां पे कंस महाराज बड़े व्यथित थे, जब से शब्द सुना, क्या हुआ, क्या इसे हुआ, क्या हुआ, वो एक सिक्योरिटी को बुला रहे थे, कोई है अंगरखी प्रतिहारी, कोई आए। उनको पता है कि ये दोनों लड़के मथुरा में आ चुके हैं, कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं। वो किसको बुलाकर खबर लेने के लिए भेजने जा रहा था, आपने भारी गदा उठा लिया था डर के मारे। लेकिन इसी समय में महाराज महाराज कह करके एक आकर उनके चरण में गिरा। महाराज देख रहे हैं भक्नशील, बिल्कुल सर फटा हुआ है, हाथ का ये निकला हुआ है, बिल्कुल पूरे रक्ताक्त शरीर जैसे तैसे आकर के गिर पड़ा और आवाज भी नहीं बोल पा रहा है, मुमूर्षु अवस्था, मरेगा अभी। इस अवस्था में तो महाराज क्या हुआ क्या हुआ ना महाराज, ये ब्रज से आए एक वाले बालक धनुर्शाला में घुस गए, हैं यहां घुस गए, क्या करते वहां, क्या कर रहे वहां, क्या कर, धनुष तोड़ दिए। बोल गया, कंस का मानदंड का मरुदंड टूट गया, धनुष तोड़ गया। उनको याद आया, उनके पुरोहित सत्यक जी बोले थे, महाराज ये धनुष अगर टूट जाए तो आपका आयु समाप्त। उनको याद आया, धनुष टूट गया। खूब पसीना चलने लगा उनके शरीर से, अब पकड़े नहीं, वो मार रहे हैं सारे सैनिक को, कैसे मार रहे हैं, सांपुल उनके सामने मौजूद है, उनके सामने सांपुल पड़ा था ना। और जाना, अभी हॉस्पिटल में भी जा पाएंगे कि नहीं, आईसीयू में डालेंगे कि बचेगा कि नहीं, हम यही सांपुल है, इस प्रकार मार रहे हैं। अब तो सांस चलने लगा, सेनापति साहब दौड़ गया, शाम हो रहा था अभी सायंकाल में, महाराज जल्दी सेना के लेकर जाओ, पूरी सेना लेकर जाओ, और उसे भवन के अंदर, धनुर्भवन के अंदर कोई बच्चे एक भी बाहर निकल कर जाए, सब पकड़ के लाओ, मारो, उठक ले आओ। चिल्लाने लगा, गर्जने लगा। सेनापति भी देखे महाराज बहुत टेम्पर में, वो जल्दी से एक सेना लेकर के भागे। अरे घर के अंदर लड़ाई करना था, किसके साथ लड़ाई करना था, बच्चों के साथ लड़ाई करना था, घर के अंदर लड़ाई करना था, कोई तोप कमान धनुर्बाण तो चलेगा नहीं, गजा सेना अश्व सेना तो कोई काम के नहीं, हाथी घोड़े घर के अंदर क्या करेंगे, कुछ पदातिक सैनिक लेकर जाना था। दो प्रकार के होता है अस्त्र, एक होता है अस्त्र, एक होता है शस्त्र, जानते ना। एक प्रकार के होता है जिसको हाथ में पकड़ करके मारते हैं, उसको बोलते हैं शस्त्र, जैसे खड़ग है, लाठी है, हाथ में लेकर के तलवार है, वो शस्त्र है। और एक प्रकार का अस्त्र होता है जिसको हाथ में लेकर फेंको, हाथ से आप हाकुन फेंक कर मारना होता, खेपण करना होता, होता है अस्त्र। तो यहाँ तो अस्त्र का कुछ काम नहीं था, शस्त्र लेकर जाना था क्योंकि घर के अंदर मारपीट करना था। तो महाराज कंस के विश्व विजयी त्रिभुवन विजयी अजय सेना चल पड़े, तुरंत हजारों संख्या में चल पड़े। अब मेन गेट खोल करके घुस गए, जिस गेट में बच्चे खड़े थे वहां नहीं गए, दूसरे गेट खोल करके शॉर्टकट घुस गए। अब राम श्याम देखे कि ये तो गए सेकंड बैच आ गए, चलो कोई बात नहीं, फिर उठा दिए। मृत्यु के देवता जमराज भी दंड पाणी कहते हैं उनको, वो अपने जमदंड धरकर भी इतने भयंकर भाई शायद दिखाई पड़े, अगर मारपीट करे उनको थोड़ा टाइम लगे, इतनी शीघ्रता भी नहीं कदाचित कर पावे, कैसे जमराज उनके समान करेगा। जिनके भ्रू भंगी को देख करके जमराज भी कांप जाए, ये दोनों स्वयं उनके प्रभु आज दंड लेकर खड़े हैं। अब हजारों सैनिक अजय सेना पदाति के आए तो कोई ऊ आ चूचा आवाज भी नहीं कर पाए, साइलेंट, धूम धाम एक पड़ रहा था, वहीं कचंबर होते थे, एक घड़ी भी नहीं लगा, एक के ऊपर एक पट गए सब, पूरे घर भवन भर गया सब में, रक्त के फवारा चलने लगा। जो पानी जाने के जो प्रणाली बना हुआ था उसमें तो भल भल करके रक्त से होश पाइप से पानी निकलता, इसे निकल रहा था। शांत कर दिए घड़ी मार करके, हजारों अजय सेना को खत्म कर दिए दोनों। वो बेचारे भाग जाना चाह रहे थे कई सैनिक, लेकिन भाग कर जाए कहां, मेन गेट पर, वो गेट तो बंद कर दिया गया था, वो गेट पर देखते थे ये दो ही लड़के डंडे लेकर के प्रलय मचा रखे हैं घर के अंदर, यहां तो सकड़ो लड़के लेकर डंडे लेकर खड़े हैं, और बच्चे डर के मारे इधर उठ जाए, ना जा नहीं सकते, उस प्रांगण में दौड़ना ही था, इधर के उधर कोई बैठ भी नहीं सकते थे, सबको ही कुचल दिए मार दिए। अभी मार करके अब सारे शरीर कपड़ा फूल मुख सारे रक्त टपक रहा है, पूरे शरीर से रक्त टपक रहा है, डंडा को फेंक दिए, सारे कपड़ा फूल श्रृंगार से उठा के वहीं फेंक करके आए। अब सारे रक्त स्नात थे, सारे साथी एक एक बारी बारी से आलिंगन किए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बाहर आकर के जो जलाशय था वहां खूब नहाए, कपड़ा उतार के, छोटे बच्चे हैं नंगे सब नहा कर लिए, सब धोधा के साफ हो गए। जो ड्रेस पहन करके आए थे बाबा से, जब आए थे मथुरा कंट्री किए थे, वही ड्रेस फिर पहन लिए सेम इनफर, वो सब वहीं फिर खा गए, वही कछनी पटुका लकड़ी लेकर चल पड़े। अब बोले देखो शाम हो रहा है, जल्दी जाना है, टाइम हो रहा है, अभी टाइम है, पिताजी ढूंढ रहे होंगे बाबा जी, और यहां तो जल्दी समय हो रहा है, इसलिए अभी अब बंद करते हैं, अब काल से फिर सुनेंगे क्या हो रहा है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो
हरे नाम पेट भरे,
हो सकता है क्या स्थिति को आने से नाम का रस को अगर अनुमत करेंगे तो दूसरा रस जरूर देंगे। अभी हम नाम का टेस्ट हमारे पास नहीं, रुचि नहीं है, मैकेनिकली लेते हैं।
हाँ।
जब हम शुद्ध हो जाएंगे, नाम का टेस्ट पता चलेगा, तब फिर दुनिया डिस्टेस्ट हो जाएगी।
तो तुम्हारा शुद्धता तो फिर कैसे
शुद्धता आएगा, वो नाम करते करते ही अपराध में नाम करते करते
अपराध तो थोक के भाव में कभी कभी तो हो ही जाता है।
मिठास महाराज की नजर आता ही नहीं है, कैसे करें, मिठास लगता ही नहीं
है, इतनी जल्दी रखिए, लगेगा। बड़े बड़े साधकों को तो 3-4 जन्म लगा, अभी आप थोड़ी साल से चाहेंगे तो कैसे होगा। नगर कीर्तन हो जाते थे, कीर्तन करके आएंगे और जो थोड़ा समय अगर होगा फिर मंदिर माँ के प्रसाद खाएंगे, साधु फिर कीर्तन करके, फिर 2 टाइम नगर कीर्तन हो जाते थे बस। तो एक बार मैंने विदेशी भक्त जो सेब हेड होकर के तिलक लगा करके नाचते ना, तो जैसे बिल्कुल देवता जैसे लगते हैं, है गोरे तक तक शरीर जैसे लगते हैं। तो एक बड़े व्यक्ति देखा, बोला क्या कर रहे हैं वो लोग, देखने तो बिल्कुल जैसे लगते हैं कंदर पर जैसा, कह रहे हैं कुछ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं समझ में नहीं आया। वो गाड़ी में उनको फॉलो किया।
अच्छा,
थोड़ी देर ज़्यादा हमें घंटा कितन कितने घंटे में शुरू चले गए, तो देखे कि वो जा रहे थे उनको भी बुलाए, तो मन में गुस्सा हो रहा था क्या कर रहे हैं, दिन भर तो नाच गा रहे हैं, अपन करते हैं सारे युवक लड़के हैं, दिव्यांग लड़के हैं सारे, कुछ काम धाम नहीं करते। तो आया मंदिर में पहुंचा तो फिर प्रसाद भक्तों के प्रसाद विदेश में तो और बढ़िया होता है, चकाचक गुलाब जामुन समोसा ये जो विदेश रुक तो कभी खाए नहीं, एक बार उसे बना के लोग बाजी समझते, बहुत बढ़िया प्रसाद फिस्ट संडे फिस्ट प्रोग्राम था और सब खाए चकाचक, उनको ही बुलाया खाए। प्रसाद खाकर इतने गुस्सा हो गया, ईर्ष्या क्या बोला, ये लोग कुछ काम नहीं करते धंधे से, हम लोग हम इतने काम करके इतने पैसा कमाते, इतना प्रसाद हम इसे बढ़िया नहीं खा पाते। वो यार कुछ नहीं करते हैं, खाते हैं इसे दबा कर, बोला हम तो बराबर खाते हैं, कुछ करते कुछ नहीं करते। अरे व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, अरे क्या हो रहा है सब। जा करके स्वामी जी के पास कहते पहुँच गया, बोला आप सब दिमाग खराब करते हो, उनको यंग लड़के ही कोई काम धाम सब धंधे छोड़ दिए, ना कर नाच रहे हो तो ईसा खा रहे हैं, हम तो इतने का मात्र नहीं खा पाए हम तो, हाँ टेंशन है, शराब पीना पड़ता है, इंजेक्शन खाना पड़ता है नींद लेने के लिए। बाबा जी बोले कि हाँ और क्या, हमको ईर्षा हो रहा है, आप हम इतने खट करके आ रहे हैं नहीं कर पा रहे, आप मजे से खा रहे हैं, ऐसा क्यों है, आप भी आ जाओ।
ठीक
आ जाओ, क्या करें, कुछ नहीं करना पड़ेगा, चकाचक आप भी खाएंगे इसी ही मस्ती में होंगे। हाँ मैं तो आ जाना चाहता हूँ, ना जाओ, क्या करना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा। ओह नहीं जाना, नहीं सबको छोड़ना पड़ेगा, आना पड़ेगा, नहीं तो फिर सोचूंगा। तो बात ये है, तो आप बोलेंगे रस नहीं आ रहा है। अभी हम लोग कुछ काम थोड़ी कर रहे हैं, बताइए ना दुकान है ना नौकरी है ना क्या है हमारा, लेकिन हम जैसे खाते हैं आप जाकर देखो, ऊपर में बैठ कर खाते हैं आप लोग सब बड़े बड़े धनी, हम आपके कोई बराबर भी नहीं हो सकते किसी माने में, लेकिन हम चकाचक खा कर आए, कुछ करते नहीं, हमने कुछ नहीं करते है ना। कहाँ से मिलता है, आप लोग से मिलता है। कृष्ण ने दिला रहे।
ने मेरे से कहा था कि भक्त सिंह प्रभुपाद ने कहा कि हम लोग को धाम जाने में 3 साल लग, 3 जन्म लग जाएगा, ऐसी बात है?
हाँ,
महाराज जी कैसे पता चलेगा कौन सा जन्म पहला जन्म है, दूसरा है, तीसरा है?
नहीं, हमारा टेस्ट पता चलता है ना, समझ ना।
मतलब मेरे कहने का मतलब ये महाराज जी, जैसे कि इस जन्म में भी तो मान लो मेरे अपना लिए तो नहीं है, किसी का मान लीजिए शुरू में टेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, लेकिन अंत में मृत्यु तक उसका टेस्ट इतना डेवलप हो जाए तीसरा जन्म आ जाए,
तो मतलब पहले क्या होगा वो? जब इस जन्म में टेस्ट किसका आ गया तो मतलब पहले कर चुका है कोटा पूरा,
तो 3 जन्म लगेंगे।
हाँ, तो लगना चाहिए, तो इसका पहले से कर चुका है, तो अभी क्योंकि ये तो नाश
बल रहा,
जो 2 किया है 3 से शुरू होगा, नाश नहीं होगा। पहले से 25-50 साल ड्राइविंग किया है फिर छोड़ दिया है, गाड़ी पकड़ने से पता चल जाएगा कि ड्राइवर है, पता है,
येस, येस,
है ना, जो बिल्कुल नया है उसे पता चल जाएगा, तो कुछ नहीं, ऐसा है।